नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों शूटरों सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज CGM कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर की। पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फूलपुर के पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को 15 अप्रैल की रात पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने गोली दागकर मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को गोली मारने वाले युवकों का कहना है कि वे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फैन है। ऐसा पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पूछताछ के दौरान कहा है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 19 अप्रैल को दूसरे दिन भी सुनवाई कर रही है। बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया और मांग की कि इस मसले पर राज्य सरकारों की राय भी लेनी चाहिए, क्योंकि विवाह का मामला संविधान की समवर्ती सूची में आता है। केंद्र सरकार ने जो नया हलफनामा दायर किया उसमें कहा गया कि विवाह एक ऐसा मसला है जो विधायिका के दायरे में आता है। ऐसे में स्पष्ट है कि किसी भी फैसले से राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे, खासकर इस विषय पर कोई कानून बनाने से राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप होगा। ऐसे में उनकी राय जरूरी है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता BS येदुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र ने बुधवार को शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले विजेंद्र ने एक मंदिर में पूजा अर्चना की और एक रोड शो भी किया। वह भाजपा की प्रदेश इकाई में उपाध्यक्ष हैं। निवर्तमान विधानसभा में सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा और विजेंद्र के भाई BY राघवेंद्र भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थे। राघवेंद्र शिवमोगा से लोकसभा सदस्य हैं। येदुरप्पा पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। मतदान 10 मई को होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में वंदे भारत की शुरुआत होने के बाद 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे की योजना आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की है। रेलवे के इस तोहफे को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि 14 महीने पहले मैंने जो सुझाव दिया अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। 25 तारीख को तिरुवनंतपुरम से नरेंद्र मोदी के पहले ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर उत्सुक हूँ। विकास को राजनीति से परे होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत हिमाचल, गुजरात आदि राज्यों में पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में भगवान राम अपने गर्भगृह में राम भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। अब रामलला की प्रतिमा के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। पिछले दिनों नेपाल से रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए शालिग्राम शिला नेपाल से अयोध्या लाई गई थी। इन शिला से ही रामलला की प्रतिमा बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य ने बताया कि कर्नाटक के मैसूर से आए श्यामल कृष्ण शिला से रामलला की प्रतिमा बनाई जाएगी। रामलला की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक निलाम्बुज श्यामल को मंगलम के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई जाएगी। कर्नाटक के कारकर और हिग्रेवन कोटे गाँव से लाए गए पत्थरों पर मूर्ति का कार्य किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को 9 दिवसीय दौरे के लिए गुयाना, पनामा, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे इन देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में इन लातिन अमेरिकी एवं करेबियाई देशों की जयशंकर की ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जयशंकर सबसे पहले गुयाना जाएंगे, जहां वे अपने समकक्ष हुग हिल्डन टॉट के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों के संपूर्ण आयामों को विस्तार देने सहित विविध विषयों पर व्यापक चर्चा करेंगे। देश में 2 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे में 10,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, वहीं मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक दिन में 30 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,542 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,45,401 हो गई। वहीं कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 63,562 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 38 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,190 हो गई। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।